साहिबा पढ़ो इसको समझो ये है
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول۔ قرآن پاک نے کیا ایسے اصول بیان کیے ہیں کہ جن پہ چل کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں؟ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے جس چیز کو لے کر حاضر ہوا ہوں، انسان کی زندگی کا اس چیز کے ساتھ مطلب لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔ انسان کو ہر عمر میں، ہر ایج میں، ہر مرحلے میں پریشانیاں جو ہیں وہ طاری رہتی ہیں۔ کوئی انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو پریشان نہ ہو۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولاد ہے، کسی کی شادی کی عمر ہو چکی ہے اور شادی نہیں ہو پا رہی، کسی کی اولاد ہے لیکن اذیت دے رہی ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی شوہر بیوی کی وجہ سے، کوئی بیوی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، کہیں اولاد والدین سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر سکھ کو اگر تلاش کرنے جائیں گے تو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو سکھ کا مرکب ہو، اس نے کبھی دکھ نہ دیکھے ہوں۔ کوئی شخص آپ کو شاید ہی ملے جس کی زندگی کے اندر تکالیف نہ آئی ہوں، پریشانیاں نہ آئی ہوں، دشواریاں نہ آئی ہوں۔ کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، ہم آگے بڑھیں گے یا ہم اسے آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اس نے تو ہمارے تلوے نہیں چاٹے، اس نے تو ہماری خوشامد نہیں کی، یہ ہمارے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب ایسے شخص کے اوپر کیا ایک پریشانی طاری ہوتی ہوگی، ایک ذہنی اذیت کا سامنا اسے جو کرنا پڑتا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک ورکنگ فیلڈ کے اندر چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو نیچا دکھانے پر لگا ہوتا ہے۔ اب جو نیچا ہو جاتا ہے، مطلب ایک نے وار کیا، کارگر گیا، کوئی کہانی ایسی کھڑی ہوئی کہ جناب سامنے والا جو ہے وہ نیچا شو ہو گیا، اس کی کوئی غلطی شو ہوگی، اس کا کوئی بلنڈر شو ہو گیا اور وہ اسے ڈانٹ سننی پڑی، پشمانے کا سامنا کرنا پڑا، کیا ہوا، پریشانی فیس کرنی پڑی۔ تو انسان کو کبھی جسمانی پریشانیاں پہنچتی ہیں، کوئی معذور ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، اپاہج ہے، کمزور ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ کبھی انسان کو جسمانی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی انسان کو قلبی رنج اور علم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی نے بڑی خوشی کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ بچی کی شادی کی لیکن بیچاری پر کوہ غم پڑا ہوا ہے، وہاں اس پر ظلم ہو رہا ہے، مطلب جہالت اتنی بڑھ چکی ہے کہ بعض بچیوں کے ساتھ تو وہ ظلم ہوتا ہے کہ مطلب کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ نکلیں گی کیسے اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے۔ محترم ناظرین کرام، ایسے ماں باپ صبح شام ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو انسان کو کہیں جو ہے وہ قلبی اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوتی ہے، لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ پریشانیوں کی وجہ سے شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کام متاثر ہو جاتے ہیں۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ میں پریشانی پروف ہوں، کوئی قلبی، ذہنی، جسمانی پریشانی مجھے آ ہی نہیں سکتی، ایسا ممکن نہیں ہے، یا آپ یہ ذہن بنا لیں कि परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, सुख भी जिंदगी का हिस्सा है तो दुख भी जिंदगी का हिस्सा है। कभी की रातें बड़ी होती हैं तो कभी के दिन बड़े होते हैं, वक्त एक जैसा नहीं होता। इन्ना माल उसरी यसरा, परेशानी के बाद आसानियां हैं। परेशानी आनी है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन मतलब जब ये जहन बन गया कि परेशानी से छुटकारा नहीं, आनी आनी है, ज़िंदगी में किसी भी मौके पर आ सकती है, तो आपकी आधी तकलीफ कम हो जाएगी, आपका आधा जो गम है वो हल्का हो जाएगा। इंसान के साथ होता यह है कि वो समझता है कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई सताया हुआ नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई परेशान नहीं है, मुझसे ज़्यादा जो है किसी को अज़ियत नहीं पहुँच रही। जब वो इस परेशानी को डबल ट्रिपल और इससे भी प्लस 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 करता चला जाता है, तो छोटी परेशानी का भी बोझ बहुत बड़ा नज़र आता है, छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी मालूम होती है। होना ये चाहिए, परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा है, किसी भी तरह की परेशानी है, हम अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आफ़ियत की दुआ करते हैं। लेकिन कभी परेशानी आए तो इंसान को साबित कदमी का मुजाहिरा करना है, इंसान को साबित कदम रहना है। क्यों? इसलिए कि अगर आपने परेशानी को अपने ऊपर तारी कर लिया तो यूँ समझिए कि आप परेशानी से नहीं निकल पाएंगे। आप परेशानी को इग्नोर करें, जो भी कैफियत है, आपने नहीं देखा कि बाज़ लोग अपनी कमज़ोरी को, अपनी कमी को, अपने नुक्स को अपने अंदर वलवले का ज़रिया बना लेते हैं और उनकी ज़िंदगी में एक चैलेंज आ जाता है कि मैं अपाहिज हूँ लेकिन मैंने ये काम करके दिखाना है। एक शख्स की आंखें नहीं होती, वो कारनामा अंजाम दे देता है कि आंखों वाले नहीं कर सकते। तो इंसान का विल पावर बुलंद होना चाहिए, कवि होना चाहिए। तो जो इंसान परेशानी को फेस करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर लेता है तो उसकी परेशानियां कम हो जाती हैं। वो दूसरों पर नज़र दौड़ाता है कि नहीं, एक मैं ही परेशान नहीं हूँ, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, कोई किस वजह से है, कोई किस वजह से है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनका एक भरम होता है, माशरे में एक मकाम होता है, वो अपना दुख किसी से बयान नहीं कर सकते, वो अपने परेशानी किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो उनकी परेशानी एक वज़न के अतबार से ज़्यादा भारी साबित होती है। तो ऐसे लोगों को भी साबित कदम रहना चाहिए। आज हम जायज़ा लेंगे कि कुरान हमारी इस सिलसिले में क्या रहनुमाई करता है, कुरान इस सिलसिले में हमें क्या पैगाम देता है, कुरान की तालीमात से हम क्या उसूल लेकर अपनी ज़िंदगी की इस उलझन को, इस दुश्वारी को, इस परेशानी को, इस कड़े वक्त को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, इस वक्त से निकल सकते हैं। कुरान पाक ने हमें बताया, ए ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। नमाज दुआ है और सब्र दवा है। कुरान पाक ने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर गिरिया करने, दुआ करने की भी तलकीन दी और परेशानियों के लिए जो चीज़ ढाल बनती है, जो चीज़ आड़ बनती है, बंदे को जो चीज़ खड़ा करती है, भंवर से निकालती है, उस चीज़ का नाम है सब्र करना। सब्र किसे कहते हैं? पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र के तस्करे को कुरान पाक में 70 से ज़ायद मर्तबा बयान किया है। 70 से ज़ायद मर्तबा सब्र का तस्किरा कुरान पाक में आया है। सब्र कहते किसको हैं? उलमा ने लिखा, अस्सब्र कुव्वतु मुकावमतिल अहवाली वल आलामिल हिस्सिया वल अकलिया, कि इंसान को हिस्सी तौर पर, या अकली तौर पर यानी कल्बी तौर पर जो रंजो गम या जो परेशानियां पहुंच रही होती हैं, इसके ख़िलाफ़ जो कुव्वत मुदाफ़ियत का एक निज़ाम कायम होता है इंसान के अपने अंदर, उस चीज़ का नाम सब्र है। आज हम मतलब हम क्या पूरी दुनिया कोरोना को फेस कर रही है, और एक ही चीज़ है कि जनाब जिसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत है कोरोना शिकस्त पा जाता है, वहाँ पर जिसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है कोरोना जो है वहाँ पर अटैक ज़्यादा करता है, वो हावी हो जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, सब्र और परेशानी का ताल्लुक भी ऐसा ही है। सब्र उस कुव्वत मुदाफ़ियत का नाम है कि जो उस दुश्वारियों परेशानियों रंजो गम की जो कैफियत है उसके मुकाबले में हमारे अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है, जो ठहराव पैदा होता है, जो सकून उस टाइम में पैदा होता है, उसका नाम सब्र है। और भी मुख्तलिफ तरह की जो है उस सब्र की तारीफ़ की गई, बाज़ ये जो तारीफ़ की गई ये मैंने बयान की अल्लामा अब्दुर्रूफ मुनावी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से। बाज़ उलमा ने लिखा, व तर्कु शिकवा मिन अलमिल बलवा लिग़ैरिल्लाह, कि बंदा जो है अल्लाह के अलावा किसी के सामने इजहार ना करे, तो एक सब्र की सूरत ये होती है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करे, अपना माजरा पेश करे, अपना मुद्दा पेश करे। कुरान पाक की आयत में इरशाद होता है, हज़रत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम जब आप इब्तिला से गुज़रे, आजमाइश से गुज़रे, तो कुरान पाक कहता है जब हज़रत सैयदना अय्यूब अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मौला करीम मुझे परेशानी पहुँची है, तो बंदा अपने रब की बारगाह में गिरिया करते हुए अपना माफी ज़मीर बयान करे, उसके अंदर शिकवे का पहलू नहीं होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में शिकवा थोड़ी किया जाता है। हम आजिज़ बंदे, हम नातवा बंदे, हम ज़ईफ़ बंदे, हम कमज़ोर बंदे क्या अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर सकते हैं? माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, बाज़ लोगों का आलम यह होता है कि उनका शिकवा करना उन्हें कुफ्र तक पहुंचा देता है। किसी के हादसा होता है, मैयत हो जाती है, फोतगी हो जाती है, कहते हैं अल्लाह ताला हमारा ही बच्चा लेना था तूने, कलमा कुफ्र है। अल्लाह ताला पर एतराज़ नहीं हो सकता, वो कादर मुतलक है, जो चाहे वो कर सकता है। कोई कहता है कि हम ही मिले थे, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये आह फगा, ये बेसब्री, ये उल फुल बकना परेशानियों में इजाफा तो करता है, नहुसत तो पैदा करता है, इंसान के ईमान के लाले पड़ जाते हैं, इंसान जो है वो ये समझिए कि सुकून उसकी ज़िंदगी से चला जाता है। सब्र सुकून लेकर आता है, और सुकून जो है इंसान की फितरत में दिलो दिमाग में आ जाए तो ये समझिए कि क्या आया और क्या गया उसे पता ही नहीं चलता। और अगर थोड़ी सी परेशानी हो या ज़्यादा परेशानी हो, उसकी वजह से इंसान के अंदर बेकरारी आ जाए, बदसकूनी आ जाए, ना काम में दिल लगेगा, ना बच्चों में दिल लगेगा, ना जो है वो इबादात में दिल लगेगा, इंसान उजड़ा उजड़ा रहेगा। तो शैतान तो चाहता यही है कि इंसान उजड़ा उजड़ा रहे, इसके तफक्कुरात मुंतशिर हों, ये परेशान ख्याल नज़र आए, ताकि ये इबादत से दूर हो, ताकि ये आहो फगा पर उतर आए, ताकि ये नाशुकरी पर उतर आए। इंसान का छोटा सा नुकसान होता है, अल्लाह ताला उसे इतना दिया होता है, इतना दिया होता है, छोटा सा नुकसान होता है, और उस नुकसान की वजह से ऐसे हथकंडों पर उतर आता है कि उसका वो अमल बिल्कुल वाज़े सरी तौर पर नाशुकरी पर मुश्तमिल होता है। बताइए, जो आजमाइश इसे दी गई तो उसमें फ़ेल हो गया, अल्लाह ताला ने इसे इतना 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 अता किया, एक छोटा सा नुकसान हुआ, इसने आओ फोगा करना शुरू कर दी, ना शुक्री करना शुरू कर दी। तो सब्र को छोड़ने में नुकसान ही नुकसान है, और सब्र को अपनाने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। बुजुर्गान दीन बयान करते हैं, सब्र एक भट्टी की मानिंद है। सब्र चीज़ क्या है? सब्र एक मश्क का नाम है। इंसान को मतलब इंसान जो है बाज़ औक़ात इतरा रहा होता है, बाज़ औक़ात लापरवाह होता है, बाज़ औक़ात इसने ज़िंदगी में कुछ ऐसा सोचा ही नहीं होता कि तकलीफ़ आने के बाद, परेशानी आने के बाद, ख़ुद को कमज़ोर महसूस करने के बाद, ख़ुद को बेबस महसूस करने के बाद जो राहें इसके सामने खुलती है, बाज़ औक़ात बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर वो नाशुक्री नहीं करता तो वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, उसे अपनी बेबसी का एहसास होता है, उसे अपनी बेकसी का एहसास होता है कि मेरी तदाबीर धरी की धरी रह गई, मेरा माल धरा का धरा रह गया, किस्मत के इस लिखे को मैं रोक नहीं पाया। तो इंसान चेंज होता है, सब्र इंसान को चेंज करता है। इंसान के अंदर बाज़ों का तकबर भरा होता है वो छटता है, इंसान को एक हकीकत का पता चलता है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं तो सबको हकीर समझता रहा, सबको नीच समझता रहा, या तो खुद मैं रुसवा हो गया। इंसान को सबक मिलता है, इंसान को ज़िंदगी में बदलाव लाने का मौका मिलता है। तकलीफ़ और परेशानी के नतीजे में इंसान के मेल धुलते हैं, वो निखरा होकर सामने आता है। तो सब्र तो एक भट्टी की मानिंद है, तकलीफ़ और परेशानियाँ एक भट्टी की मानिंद हैं, और एक साबिर आदमी इस भट्टी से पाको साफ होकर निकलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह परेशानियों का, दुश्वारियों का, बंदे को आजमाइश में डालने का तज़किरा फरमाया है। एक आयत मुबारका तो बड़ी ही जामे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, लनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, कभी हम तुम्हें खौफ देकर आजमाएंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमें नसीब हुआ है 1442 सन हिजरी 2021 का रमज़ान देखना। यही रमज़ान 2020 में भी हमने देखा था, खौफ का आलम था। सड़कों पर लोग नहीं आते थे, रोड खाली थे, कर्फ्यू का समय था। कर्फ्यू भी क्या कर्फ्यू होगा, मतलब सबसे बढ़ के ये कि बेयकीनी, खौफ, कारोबार का क्या होगा, इंसान की ज़िंदगी का क्या होगा, मुलाजमतों को क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, पेट्रोल की कीमतें गिर गईं, पेट्रोल माइनस में चला गया, मतलब कि ऐसा इंसान पर खौफ गालिब है। जो कोरोना का शिकार हुए, बीमार हुए, वो अपनी जगह पर, लेकिन पूरी दुनिया ने खौफ को फेस किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमा रहा है, लनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, कभी तुम्हें खौफ देकर आजमाया जाएगा। और खौफ की बहुत सारी किस्में होती हैं, तो मैंने एक खौफ बयान किया, बहुत सारी किस्में होती हैं खौफ की। वल जूई, कभी फ़क्र व फाका के ज़रिए इंसान जो है वो आजमाइश से गुजरेगा। वनक्सिम मिनल अमवाल, बंदा मालदार होता है, रेल पेल होती है, अच्छी सैलरी होती है, लेकिन फिर क्या होता है, तंगदस्ती आ जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा माल में कमी के ज़रिए। और फरमाया वल अनफुस, कहते हैं जी जवान मौत हो गई घर में, बड़ा लाडला था चला गया, फोतगी के ज़रिए तुम्हें आजमाया जाएगा। जब बंदे का प्यारा जाता है, क्या उस पर सदमा वाक़ होता है, एक हुज़्न होता है, एक गम होता है, तो गम जो है एक बड़ी मुसीबत की कैफियत होती है। इंसान सोचता है दुनिया मेरे लिए बेकार हो गई है, और बहुत सारे लोग तो न जाने गम की कैफियत में कहाँ तक चले जाते हैं। नहीं, साबित कदम रहना है और हालात को खुश दिली से फेस करना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, फेस करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अगर एक चीज़ नहीं है, मिसाल के तौर पर किसी का माल नहीं है, बस उसके पास सेहत तो है, किसी के पास पर फ़क्र व फाका है, लेकिन उसके पास माल तो है। फरमाया गया वस्समारात, कहत पड़ जाता है बाज़ औक़ात, तो कहत के ज़रिए इंसान आजमाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है वबशरिस साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा, खुशखबरी दीजिए उन लोगों को कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुँचती है, आहो फगा नहीं करते, अल्लाह ताला पर एतराज़ नहीं करते, वो जजा और फजा नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं, उन्हें उनका माल गया हो, उनकी जान गई हो, उन्होंने जो है वो अपनी जान का कोई नुकसान किया हो, वो क्या कहते हैं? قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے. غم کس بات کا, اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے, أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ, یہ لوگ فلاح یافتہ ہیں. ہمیں چاہیے تھا نا, ہم تلاش میں تھے, کوئی پرنسپل مل جائے, کوئی اصول مل جائے, کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. تو قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ انسان کی زندگی مصائب سے, مصیبتوں سے, آلام سے, غم سے, پریشانی سے, صدمات سے, حوادثات سے, آفات سے خالی نہیں ہوتی. یہ تو آنی ہے, لیکن بندے کا یہ ایک آزمائش کا پیریڈ ہوتا ہے. انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا شیطان کی پیروی کرتے ہوئے آہ فغا پر اتر آتا ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے, تو ایسے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عافیت طلب کرے, سلامتی طلب کرے, جو آزمائش اور ابتلا آئی ہے اس سے نکلنا جو ہے طلب کرے. لیکن شور مچانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, آہ فغا کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے پاس جائیں گے, اس کے پاس جائیں گے, اس کے پاس جائیں گے, مطلب چھوٹی سی پریشانی کیا آئے گی, ایسا لگے گا کہ پورا جہان پریشان ہو گیا ہے. کوئی نظر آ جائے بس اس کو کھڑا کر کے سب بتا کے چھوڑنا ہے. یہ جو ہے انداز, یہ انداز بے صبری کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ کو بے صبری کا انداز پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت تو صابرین کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے, صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا, الطہور شطر الایمان, طہارت جو ہے ایمان کا حصہ ہے. والحمد للہ تملا المیزان, اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا میزان کو بھرتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ تملعان او تملعو, سبحان اللہ کہنا, الحمد للہ کہنا, یہ میزان کو بھر دیتے ہیں. ما بین السماوات والارض, آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس خلا کو بھر دیتے ہیں. فرمایا, والصلاۃ نور, نماز نور ہے. والصدقۃ برہان, صدقہ برہان ہے. والصبر ضیاء, صبر تو روشنی ہے. انسان کی توجہ نئی جہتوں کی طرف ڈالتا ہے. صبر کی راہ پر چل کے انسان کندن ہو جاتا ہے. صبر کی راہ پہ چل کے انسان حالات کو فیس کرنا سیکھتا ہے. فرمایا, والقرآن حجت لکا علیکا, اور بھی طویل حدیث مبارکہ ہے. تو اس حدیث پاک میں صبر کو جو ہے وہ روشنی کہا گیا ہے. محترم ناظرین کرام, ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ما اوتی احدا اطاعا خیرا اوسع من الصبر, جس بندے کو قوت صبر دی اللہ رب العزت نے, اسے قوت صبر سے سرفراز کیا, تو یہ تو ایک خیر کا وصف ہے, یہ تو ایک عمدگی کا وصف ہے, اور اس وصف کے تو کیا کہنے ہیں. صبر کو خیر کہا گیا ہے بندے کے لیے, صبر کو ایک عمدہ نعمت کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو صبر جو ہے اللہ کی نعمت ہے. محترم ناظرین کرام, کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے, انما العسر یسرا, کہ ہر تکلیف کے بعد دو آسانیاں ہیں. تکلیف عارضی مدت کے لیے ہوتی ہے, پریشانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو دو خوشیاں عطا کرتا ہے, दो आसानियाँ अता करता है। तो दो आसानियाँ बंदे को जो मिली वो तकलीफ़ की वजह से, परेशानी दुश्वारी की वजह से मिली, तो दुश्वारी से घबराना नहीं है, दुश्वारी के सामने खड़ा रहना है, फेस करना है, आफियत की दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, हमें हौसला अता फरमाए। जो जो मज़लूम मुसलमान हैं, परेशान मुसलमान हैं, कोई दीन की वजह से परेशान है कि उसे दीन की वजह से सताया जाता है, कोई ज़ालिमीन की वजह से परेशान है, कोई इज़्ज़त की वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है, अल्लाह ताला परेशान हाल मुसलमानों को हौसला अता फरमाए और इन तकालीफ से निजात अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
ये है कामयाबी यही साहिबा, पढ़ो इसको समझो ये है।